आज है 29 अगस्त दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल भेजने से इनकार किया और कहा घर पर नजर बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर नक्सलियों का साथ देने का आरोप लगाया।
ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो भारत को तोड़ना चाहती है, उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी।
गिरफ्तारियों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा,
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेशर वॉल्व है डेमोक्रेसी में, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर ये प्रेशर कुकर फट जाएगा।
और सुनिए ये सवाल,
अभी भी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं दहशतगर्द और यहाँ से सरगर्मी करते हैं हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में, क्या ये इमरान खान बंद कर सकेगा?
पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार को गिरफ्तार किए गए 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फिलहाल रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई होने तक इन सभी को घर में नजरबंद रखा जाए। पुणे पुलिस ने मंगलवार को इन 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधिकारी इन्हें माओवादी हिंसा का दिमाग बता रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने 4 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय शोपियां जिले में पुलिसकर्मी एक वरिष्ठ अधिकारी की सुरक्षा में लगे थे, चरमपंथियों ने एक बागीचे से गोलियां चलाईं। हमलावर पुलिस वालों की बंदूकें भी अपने साथ ले गए हैं। यह हमला चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर अल्ताफ अहमद डार की भारतीय सुरक्षा बलों की गोली से मौत के कुछ ही घंटों बाद हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कदम को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र बढ़ाकर 63 साल करने की तैयारी थी। उन्होंने टीवी पर एक संबोधन में कहा कि महिलाओं को पेंशन देने की उम्र धीरे धीरे 55 से 60 साल की जाएगी, हालांकि पुरुषों की उम्र सीधे 60 से 65 साल कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों को पेंशन का लाभ ही नहीं मिल पाएगा। इस मामले में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, प्रस्तावित कानून में महिलाओं को पेंशन दिए जाने की उम्र सीधे 8 साल बढ़ाकर 63 साल किए जाने की बात कही गई थी, जबकि पुरुषों की उम्र 5 साल बढ़ाई जानी थी। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये गलत है। हमारे देश में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। हम जानते हैं कि वे न सिर्फ अपने काम की जगह पर काम करती हैं, बल्कि घर परिवार और बच्चों की देखभाल में भी लगी रहती हैं। महिलाओं के लिए पेंशन की उम्र पुरुषों से ज्यादा नहीं होगी। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। ब्राजील अपने सैनिकों को वेनेजुएला की सीमा के साथ लगते रुराइमा प्रांत में भेज रहा है, जहां पर स्थानीय लोगों की वेनेजुएला छोड़कर आ रहे लोगों के साथ झड़पें हुई थीं। वेनेजुएला इन दिनों गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यहां के नागरिक पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने टीवी पर एक संबोधन में कहा, मैंने रुराइमा राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए सैन्य बलों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, ताकि ब्राजील के नागरिक और अपना देश छोड़कर ब्राजील में शरण की उम्मीद में आ रहे वेनेजुएला के लोगों को सुरक्षा दी जा सके। ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति के शब्द, जिन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला का आर्थिक संकट पूरे दक्षिण अमरीकी महाद्वीप के लिए महाद्वीप की शांति के लिए खतरा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार से दिन रात काम करने के लिए कहा है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति हसन रूहानी और उनके मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान खामेनेई ने ये बातें कही। ईरान बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और मुद्रा में गिरावट से जूझ रहा है। ये हालात अमरीका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पैदा हुए हैं। मंगलवार को रूहानी को अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब देने के लिए संसद में भी बुलाया गया था। नामीबिया के मूल निवासियों ने औपनिवेशिक तौर में उनके लोगों के नरसंहार के लिए खेद न जताने के लिए जर्मनी सरकार की आलोचना की है। हिरोरो लोगों के प्रमुख वेकुई रुकोरो ने बर्लिन में उस कार्यक्रम के दौरान जर्मनी सरकार के रुख की निंदा की, जिसमें करीब 100 साल पहले नामीबिया में हजारों लोगों को मारे जाने के बाद जर्मनी लाई गई उनकी खोपड़ियों को वापस किया जा रहा है। इन खोपड़ियों को 20वीं सदी की शुरुआत में नामीबिया से जर्मनी ले जाया गया था, ताकि प्रयोग करके ये साबित किया जा सके कि गोरे लोग जातीय रूप से श्रेष्ठ हैं। बीबीसी समाचार। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शहरी नक्सली होने का आरोप लगाकर जिन 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कल दिल्ली और दूसरे शहरों में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें न तो जेल भेजा जा सकता है और न ही पुलिस कस्टडी में। उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनके घर पर नजरबंद किया जा सकता है। इतिहासकार रोमिला थापर, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, सतीश देश पांडे, देवकी जैन और माया दारूवाला की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया। उधर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा को गिरफ्तार करके पुणे ले जाने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
देश की 5 जानी मानी हस्तियों की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और 5 मानवाधिकारकर्ताओं की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा है। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा और वकील सुधा भारद्वाज ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद अदालत ने दोनों को पुणे ले जाने के लिए पुलिस को रिमांड देने से मना कर दिया था। याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले एक वकीलों में एक प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर कहा कि अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में नहीं रख सकती और 6 सितंबर तक, जब इस मामले की फिर से सुनवाई होगी, 5 लोगों को उनके घर में नजरबंद रखा जाए। दिल्ली में की गई गिरफ्तारियों के अलावा पुणे पुलिस ने हैदराबाद से तेलुगु कवि और मानवाधिकार कार्यकर्ता वरवर राव और मुंबई से वर्णन गुंजाल्विस और अरुण परेरा को भी गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों को मुंबई के पास भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को हुई हिंसा से भी संबंधित बताया जा रहा है। गौतम नौलखा के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब गिरफ्तारी का वारंट और सारी चीजें मराठी भाषा में है, तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो किस तरह जानेगा कि उसके ऊपर किस तरह का इल्जाम लगाया गया है। हाईकोर्ट जजों ने यह भी कहा कि पुलिस जो आरोप लगा रही है कि उनका संबंध भीमा कोरेगांव मामले से है, तो नौलखा को तो कहना है कि वो वहां मौजूद ही नहीं थे। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि वो 4 हफ्ते में इस मामले की जानकारी उसके सामने पेश करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता जिमनी श्रीवास्तव ने कहा कि आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसा लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इन अरेस्ट को लेकर, वो शायद पुलिस अथॉरिटीज ने फॉलो नहीं किया है और इसकी वजह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला बन सकता है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत में 2 तरह के दृष्टिकोण हैं, एक जिसमें सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हैं और दूसरी जिनमें इनका विकेंद्रीकरण है। एक में सिर्फ एक ही तरह के विचार का आदर होता है जो नागपुर से आता है, दूसरा है जिसमें सभी संस्कृतियों, विचारों और इस देश के विभिन्न लोगों का आदर किया जाता है। ये थे राहुल गांधी के शब्द। हालांकि ये याद रखने की जरूरत है कि आदिवासी इलाकों में, जिन्हें माओवादी क्षेत्र भी बोला जाता है, वहां ऑपरेशन ग्रीन हंट तब शुरू हुआ था जब केंद्र में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार मौजूद थी, बंद हो पाया। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
थोड़ी देर में कोशिश करेंगे पुणे जाने की, जहां पर एक अदालत में 3 अन्य अभियुक्तों को पेश किया गया, जिनमें एक तेलुगु कवि वरवरा राव भी शामिल हैं। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
राहुल जी की उस समय की पार्टी और उस समय की सरकार कह रही थी कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो शहर में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बसे हुए हैं, ये ज्यादा खतरनाक है उन लोगों से जो जंगल में गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, और आज उनको वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बता रहे हैं, मानव अधिकार के पुरोधा बताया जा रहा है आज इन लोगों को। बंधुओं, आगे कहते हैं राहुल जी की उस समय की पार्टी, आप सुनिएगा ध्यान से, लीगल एक्शन अगेंस्ट दीज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी इनिशिएटेड। ये जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और जब आज हो रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो उनका नाम है राहुल गांधी। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि द कांग्रेस पार्टी हैज रीच्ड अ न्यू लो। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही समाप्त कर रही है। कहां तो एक जमाने में कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होया करती थी, और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ इनटू अ फ्रिंज आउटफिट। आज एक फ्रिंज आउटफिट बन गई है, मेनस्ट्रीम पार्टी नहीं रही है, और टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो भारत को तोड़ना चाहती है, उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से अब से कुछ ही देर पहले मैंने संपर्क किया और पूछा कि कोर्ट में क्या हुआ।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स भी किए कि इस तरह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और जो लोग डिसेंट कर रहे हैं उनको इस तरह से अरेस्ट करने से तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू डिसेंट है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेशर वॉल्व है डेमोक्रेसी में। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। और नोटिस इशू किया है, अगली डेट अगले थर्सडे को लगाई है, और इस बीच में बोला है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं, कस्टडी में नहीं ले सकते, जेल में नहीं भेज सकते, अपने घर पर अरेस्ट करके रख सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट से आपने मांग क्या, आपकी प्रेयर क्या थी, आप किस वजह से सुप्रीम कोर्ट गए थे?
हम लोग इसलिए गए थे कि ये जो अरेस्ट हुए हैं और पहले भी जो अरेस्ट हुए थे जून में, जिसमें कि 5 दूसरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, ये सब अरेस्ट ये दिखाते हैं कि भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुआ उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस एक्टिविस्ट को, जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार जो आदिवासियों और दलितों को प्रताड़ित करती है उसके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए इन लोगों के अरेस्ट वगैरह करे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया है जिनका भीमा कोरेगांव से कोई लेना देना ही नहीं था, ना वो वहाँ पर थे, ना उनका कोई किसी तरह का कनेक्शन था उससे।
सरकार ये कहती है कि माओवादी आंदोलन एक चल रहा है, वो हथियारों से, उनके पास हथियार हैं, और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग शहरों में हैं जिनको वो अर्बन नक्सल कहती है। तो अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इसमें इतनी बेचैनी क्यों है?
देखिए, पहली बात तो जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है इनमें से शायद वरा वरा राव को छोड़कर बाकी कोई ऐसा जना नहीं है जिसकी कोई माओवादी से कोई कनेक्शन हो, कोई सहानुभूति हो। और अगर सहानुभूति है भी, वरा वरा राव को ले लीजिए, अगर उनकी सहानुभूति है भी, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे हिंसा होती हो तो उससे कोई अपराध नहीं होता।
ये थे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण। उधर पुणे में एक अदालत में वरवर राव और दो अन्य अभियुक्तों को आज पेश किया गया। ये सीधे चलते हैं पुणे, जहां बीबीसी मराठी सेवा के मयूरेश कुन्नूर संवाददाता मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारे संपर्क में है। मयूरेश, ये तो अब तो मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 5 अभियुक्तों में से किसी को भी जेल नहीं भेजा जाएगा और उनको हाउस अरेस्ट या घर पर नजरबंद करके रखा जा सकता है। अदालत में, वहां की अदालत में आज जो बहस मुबहसा हुआ, जो बातचीत हुई, सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा वहां पे?
जी, सरकार ने अपना पक्ष रखा राजेश जी कि ये जो पकड़े हुए लोग हैं, तीनों लोग हैं, वो सीपीआईएम माओइस्ट जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव मेंबर हैं, और उनके पास इस सीपीआई की जो माओइस्ट विचारधारा फैलाती है, वायलेंस की बात करती है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि उनको कुछ लेटर्स मिले हैं जो इससे पहले इस केस में अरेस्ट हुए हैं उनके पास से, इनमें इन लोगों का नाम है, इनके पहले भी कुछ हिस्ट्री रह चुकी है, और इसी की वजह से हम इनको इंट्रोगेट करना चाहते हैं। पर भीमा कोरेगांव की घटना होने से एक दिन पहले जो पुणे में एल्गार परिषद हुई थी, उस परिषद मुखड़ा परिषद था, लेकिन इसके पीछे ये सारे लोग माओवादी आइडियोलॉजी फैलाने का काम कर रहे थे और वो गवर्नमेंट को थ्रेट था, ये सब कहा। हालांकि जो डिफेंस पर है उन्होंने भी अपना पक्ष लेते हुए कि यूएपीए जो इनको लगाया हुआ है वो इस केस में कैसे नहीं है। अगर भीमा कोरेगांव की बात करते हैं तो वो एक बुक मिनिस्ट्री के बीच का झगड़ा था, इनमें कोई संबंध नहीं है और इनको छोड़ दिया जाए, कस्टडी ना दी जाए।
मयूरेश माफ कीजिएगा, आपकी आवाज, आपका मोबाइल फोन बहुत स्पष्ट नहीं है, आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर हमारे श्रोताओं को शायद उतनी आवाज नहीं आ रही होगी। संक्षेप में थोड़ा बताइए कि तीन अभियुक्तों को जो पेश किया गया, क्या उनको अब रात को कहाँ रखा जाएगा?
अभी अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब पुणे के कोर्ट को भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ऑर्डर है, और फिर कोर्ट ने भी बहुत कुछ देर समय लिया सोचने के लिए कि क्या किया जाए, और अब से कुछ ही देर पहले इन तीनों जो अभियुक्तों हैं उनको बुलाया गया कोर्ट ने और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ऑर्डर है और आपको हाउस अरेस्ट रखा जाएगा,
यानी वापस उनको हैदराबाद ले जाया जाएंगे।
हैदराबाद और जो मुंबई से पकड़े गिरफ्तार किए हुए थे उनको मुंबई अब वापस लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा।
बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश कुन्नूर पुणे से, ये हमारे बीबीसी मराठी सर्विस के संवाददाता थे। इधर दिल्ली में गिरफ्तारियों के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां बीबीसी हिंदी के संवाददाता विनीत खरे मौजूद थे।
इंडियन ट्रम्प डाउन डाउन, इंडियन ट्रम्प डाउन डाउन।
हम इस वक्त महाराष्ट्र सदन के बाहर हैं, जहां पर पुणे पुलिस की तरफ से जो अरेस्ट किए गए हैं उनका विरोध करने के लिए यहां पर लोग जमा हुए हैं। ये लोगों के हाथों में यहां बैनर्स हैं, एक जैसा बैनर मुझे दिख रहा है, डिफेंडर्स ऑफ द पीपल, एनिमीज ऑफ द स्टेट, उसके बाद से विभिन्न संस्थाओं से, ग्रुप से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सदाशिव है।
क्यों आए हैं सदाशिव जी आप? मैं देख रहा हूँ आप हमारा संघर्ष जिंदाबाद एक कागज़ पे लिखा हुआ है
आपके लिए आया हूँ, प्रतिरोध में आया हूँ। जो भी घटनाएं घटी हैं, जिस ढंग से जो है जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए या कुछ आवाज़ उठाने वालों के ऊपर चुन चुन के जैसे उठा के जो है उनको जेल में डालने के लिए एक कोशिश हुआ है, हो रहा है, उसके खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए आया हूँ। प्रतिरोध,
पुलिस एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाए? वो जो चार्जेस है उसको प्रूव करें, अगर नहीं हुआ तो जो लोग अरेस्ट हुए वो छूट जाएंगे।
बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई इस देश के अंदर यहाँ जो आए हुए हम में से कोई पुलिस एजेंसियों से काम कराने से हम रोक सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर रोकेगा पुलिस एजेंसियों को अपने काम कराने से? सुनिए मेरी बात, सुनिए, जनतंत्र में स्टेट और स्टेट ऑपरेटर्स, सत्ता की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो एक टैक्स लगाना ही बात क्यों ना, ये सब भूल जाइए, अरेस्ट वरेस्ट टैक्स लगाना, उसके ऊपर भी सवाल पूछने के जनता को अधिकार होता है।
मैम, आप क्यों इकट्ठा हुई हैं, क्या नाम है आपका?
माय नेम इज आनी। हम यहाँ आए हैं ताकि इस तरह का अत्याचार ना हो। वी आर ऑल इंडियंस और टॉलरेंस तो होना चाहिए।
जो लोग एक तरफ गवर्नमेंट की प्रो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज को अपोज करते हैं और दूसरी तरफ जो अपर कास्ट शोवनिस्ट पेट्रियार्कल एजेंडा को अपोज करते हैं, उसको आप एक FIR भीमा कोरेगांव के FIR को डिस्टॉर्ट करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं उसके तहत जो लोग बिल्कुल ही कास्टिस्ट नहीं हैं और जो जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
ये थी कुछ प्रदर्शनकारियों की आवाज़ें जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। अब वक्त है दुनिया जहान का।
दुनिया जहान।
That's up in the air. He's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. Imran Khan.
ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई जीत की ये कहानी अमर है। इमरान अहमद खान रियाजी 25 मार्च 1992 के बाद किसी और मैदान पर ना भी उतरते तो भी पाकिस्तानी इतिहास के सबसे बड़े नायकों में गिने जाते। क्रिकेट के पांचवें वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी करिश्माई कप्तानी के जरिए उस टीम को ट्रॉफी जीतने की राह दिखाई जो शुरुआती पांच में से सिर्फ एक मैच ही जीत सकी थी, जिसके खिलाड़ी हौसला हार चुके थे और नाकामी की यादों के साथ खाली हाथ घर लौटने की तैयारी में थे। 26 साल बाद इमरान खान एक और मैदान पर विजेता बनकर उभरे। 65 बरस के हो चुके इमरान ने इस जीत के लिए पूरे 22 साल संघर्ष किया। इस दौरान नाकामी दर नाकामी के बीच आलोचकों ने उनका नाम तक बदल दिया, उन्हें इमरान खांट कहा जाने लगा, यानी इमरान से नहीं हो पाएगा।
मैं इमरान अहमद खान नियाजी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं मुसलमान।
और अब वही इमरान खान पाकिस्तान की सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष और नया पाकिस्तान बनाने का नारा वोटरों को भा गया। इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी कहते हैं कि इमरान खान की कामयाबी में मेहनत के साथ किस्मत की भी बड़ी भूमिका है।
इमरान खान की कप्तानी की सलाहियतों के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा अहम किरदार था। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान किस्मत के धनी साबित हो रहे हैं। उन्होंने 2014 में धरना दिया जो 3-4 महीने चला, लेकिन वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाने में या नवाज शरीफ को गिराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर अचानक पैनमा का एक मुद्दा सामने आया और वो ऐसा आया कि वो नवाज शरीफ को ले डूबा।
किस्मत कुर्सी दिला सकती है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं। इस जिम्मेदारी को कांटों का ताज कहा जाता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम हुसैन याद दिलाते हैं,
25 सालों से या 30 सालों से हमारी ये हिस्ट्री चल रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बाद ओथ लेता है वो प्राइम मिनिस्टर खत्म नहीं कर पाता वो टर्म। अब क्या वो वाली हिस्ट्री टूटेगी? उनकी मेजोरिटी बहुत नैरो है। किस हद तक वो अब रीच आउट कर सकते हैं दूसरी पार्टीज को, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ हाथ जोड़ के उनसे कहें कि यार अब हम लोगों ने साथ साथ चलना है, जो भी हो, इस पे बहुत डिपेंड करेगी उनका पॉलिटिकल स्टाइल वो क्या यहां से आगे ले।
राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि इमरान खान के सामने मुश्किलों का ऐसा पहाड़ है जिसे पार करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर नए प्रधानमंत्री की चुनौतियों की बात करती हैं।
ये क्रिकेट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है पाकिस्तान जो बड़े अरसे से बहुत से दुश्वारियां चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की महशत है, यानी इकोनॉमी है, जो बड़े बुरे हाल में है।
आम चुनाव के काफी पहले से ही अर्थशास्त्री पाकिस्तान के वित्तीय संकट का मुद्दा उठा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात घट रहा है, पाकिस्तानी रुपया गोते लगा रहा है। जून 2018 में चालू खाते का घाटा बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इमरान खान भी आर्थिक चुनौतियों की बात लगातार करते रहे हैं।
मैं आज अपनी कौम से आप सबके सामने कहता हूं, मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा।
मरियाना बाबर कहती हैं कि प्रधानमंत्री के इस अंदाज की कुछ हलकों में तारीफ भी हो रही है।
कुछ ऐसे मेजर्स इमरान खान खुद ले रहा है जो इसमें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं बचेंगे, मगर एक रिवाज शुरू हो गया है। बहुत बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसे निकल गए हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री के ऐसे ऐलानों को असल चुनौतियों के मुकाबले परखने वाले ज्यादा प्रभावित नहीं है। खुर्रम हुसैन को सुनिए।
आपने एक डायस्पोरा बॉन्ड अगर फ्लोट कर दिया, या अगर आपने डायस्पोरा ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल फॉर हेल्प भेज दी तो उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा करके जमा कर दिया आपके लिए, या आपने किसी और मुल्कों के बैंकिंग सिस्टम्स के साथ कार्रवाई करके जो आप कह रहे हैं कि लूटे हुए पैसे हैं उनको वापस लाके, इन चीजों से नहीं आपके एक्सटर्नल डेफिसिट्स मीट होते हैं। आपके डेफिसिट्स मीट होते हैं जब आपकी रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चढ़ती है और जब आप अपने करेंसी को प्रॉपरली मैनेज कर सके।
खुर्रम हुसैन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब, चीन और आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन वो आगाह करते हैं कि इससे सरकार के हाथ बन सकते हैं। वो बेनजीर भुट्टो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री का करिश्माई होना मुश्किल खत्म होने की गारंटी नहीं देता। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो दावा करता है कि इमरान खान मुश्किलों का ये दौर पार कर लेंगे। बीबीसी के आसिफ फारूकी।
आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई इलेक्शन के बाद या चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद जिसने कहा हो जी कि हमारा खजाना भरा हुआ है और हमें इकोनॉमिक मुश्किलात नहीं है। हर दफा यही कहा जाता है जी पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है।
लेकिन चुनौतियां सिर्फ यही खत्म नहीं होती। दहशतगर्दी को काबू करने की चुनौती पर इमरान खान खरे उतर पाएंगे, इस पर भी कई विश्लेषक शक जताते हैं।
दहशतगर्दी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं दहशतगर्द और यहाँ से सरगर्मी करते हैं हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में। क्या ये इमरान खान बंद कर सकेगा? जो हम इमरान खान को जानते हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, इसकी आवाज हमने नहीं सुनी।
मरियाना बाबर ये भी दावा करती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऐसी शक्तियाँ जो सरकार के काबू में नहीं है वो इमरान खान की विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है।
जो मुझे डर है वो ये है جب بھی پاکستانی وزیر اعظم جو الیکٹڈ آتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کا ہندوستان کے ساتھ, تو کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کارگل دیکھا, آپ نے ممبئی ٹیررزم دیکھا, پھر آپ نے پٹھانکوٹ دیکھا. تو اس قسم کا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو عمران خان تو نہیں بند کر سکتا, یہ تو آپ لکھ لیں. جو ہمارے پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی فوج کے نیچے ہیں.
عمران خان کے لاکھ انکار کے بعد بھی عام چناؤ کے دوران ویرودھی لگاتار آروپ لگاتے رہے کہ ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو فوج کا سمرتھن حاصل ہے. لیکن وشلیشک سوال کرتے ہیں کہ ودیش نیتی کے جٹل مسئلوں پر اگر عمران خان نے سوتنتر دشا چنی تو فوج کا رخ کیا ہوگا, خاص کر بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے دو قدم بڑھانے کا دعویٰ کیسے سچ ہوگا. خرم حسین امریکہ اور چین کے ساتھ تال میل بٹھانے کو بھی عمران خان کے لیے چنوتی بتاتے ہیں.
اب ہمارے دور میں ایک نیا انگریڈینٹ شامل ہو گیا ہے, وہ چائنا ہے, جو پہلے دور رہتا تھا اس ریجن سے لیکن اب قریب آ گیا ہے. اب انویسٹمنٹس کر لی ہیں, اب اس نے اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹس بھی یہاں پہ ڈیفائن کر لی ہیں. پاکستان ابھی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے بالکل درمیان کھڑا ہوا ہے. جن دونوں ملکوں کی جو رائیولری ہے وہ ہمارے ریجن میں گرو کرنے والی ہے.
یعنی پاکستان کے نئے سیاسی کپتان کے ہر قدم پر چنوتیاں ہیں. انہوں نے تجربے کار لوگوں کی ٹیم تو تیار کی ہے, لیکن اگر یہ ٹیم جلدی ہی تمام چنوتیوں پر جیت حاصل کرنے کا فارمولا نہیں کھوج سکی تو عمران نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیسے پورا کریں گے, ارتھ ویوستھا کو کیسے ڈھرے پر لائیں گے اور امریکہ اور بھارت سے کیسے رشتے سدھاریں گے, یہ سوال ہر دن مشکل ہوتے جائیں گے.
دنیا جہان پرستت کر رہے تھے واتسل رائے, اور اب کھیل سماچاروں کے لیے چلتے ہیں سیدھے جکارتا, جہاں کھیل پترکار امن پریت سنگھ ہمارے سمپرک میں ہیں. اور وہاں سے اچھی خبر یہ ہے کہ بھارتی ایتھلیٹ دیوتی چاند نے پھر سے جھنڈے گاڑے ہیں. کیا جھنڈے گاڑے ہیں بتائیے امر پریت سنگھ
جی. اس سے پہلے کہ میں دیوتی چاند کی بات کروں, اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا سپنا برمن کی. تو بھارت کی پہلی ہیپٹا ایتھلیٹ بن گئی ہیں ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی. اس سے پہلے بھارت کے کھلاڑیوں نے اور مہیلاؤں نے ہی سلور میڈل اور برانز میڈل تو جیتے ہیں لیکن گولڈ کبھی نہیں آیا تھا.
کیا بات ہے, آپ نے بہت اچھی بہت خوشخبری سنائی ہے آپ نے.
جی آج راشٹریہ کھیل دیوس بھی ہے اور کھیل پریمیوں کے لیے اس سے اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا. خاص بات یہ بتاتا ہوں, سپنا برمن کے دونوں ہی پیروں میں چھ انگلیاں ہیں تو ان کے پاس ایسے جوتے نہیں ہیں جو کمفرٹیبل ہوں, لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا کمپیٹ کیا اور اپنے لیے یہ گولڈ میڈل جیتا. ایک اور بات, اس کمپٹیشن سے پہلے ان کے دانت میں بہت تیز درد تھا. انہوں نے بتایا کہ میں چاکلیٹ بہت کھاتی تھی اور اس وجہ سے میرے درد رہا, لیکن میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی اور انہوں نے جانے نہیں دیا.
بس انہوں نے تو موقع جانے نہیں دیا, لیکن ہمارے پاس کچھ ہی سیکنڈ بچے ہیں, باقی خبریں بتا دیجیے.
جی باقی خبر میں بتاؤں گا کہ ارپندر سنگھ نے بھی آج گولڈ میڈل جیتا ہے ٹرپل جمپ میں, اور یہ گولڈ میڈل بھارت کی جھولی میں آیا ہے 48 سال بعد. اس سے پہلے 1970 میں موہندر گل نے گولڈ میڈل جیتا تھا ٹرپل جمپ میں. اب جو آپ نے پہلے پوچھا تھا دوتی چند, تو دوتی چند نے اپنا دوسرا میڈل جیتا, یہ بھی سلور ہی رہا 200 میٹر کی دوڑ میں, لیکن یہ گولڈ سے کم نہیں ہے کیونکہ پچھلے 4 سال بہت مشکل رہے ہیں ان کے لیے.
جی امن پریت سنگھ, میں آپ کو یہیں روک رہا ہوں, کل آپ سے اور خبر لیں گے. فی الحال یو ایس اوپن کا تازہ حال بتا رہی ہیں سوریانشی پانڈے.
ٹینس میں کھیلے جا رہے یو ایس اوپن میں آج تیسرا دن ہے, جس میں مین سنگلز میں آج روجر فیڈرر کا مقابلہ تھا جاپان کے کھلاڑی یوشیشی توشنیوکا کے ساتھ, جس کے اندر روجر فیڈرر نے 6-2, 6-2, 6-4 سے یوشیشی توشنیوکا کو ہرا دیا. تو وہیں ویمن سنگلز کی بات کریں تو وہاں پر ماریا شاراپووا کا مقابلہ تھا سوئس کی کھلاڑی پیٹی شائنڈر کے ساتھ, جس کو انہوں نے 6-2, 7-6, 8-6 سے اپنے نام کیا. اور اب یو ایس اوپن میں مین سنگلز کے مقابلوں کی بات کریں تو ابھی ڈومینک تھیم اور سٹیو جانسن کے بیچ مقابلہ ہونا ہے, تو وہیں اینڈی مرے بھیڑیں گے اسپین کے کھلاڑی فرنانڈو ورداسکو کے ساتھ.
जानकारी दे रही थी सूर्यांशी पांडे. और अब समाचार का समय हो गया है क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने वाला है. एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर.
बीबीसी समाचार. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार को गिरफ्तार किए गए 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फिलहाल रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा. भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने 4 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कदम को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र बढ़ाकर 63 साल करने की तैयारी थी. इराकी प्रशासन का कहना है कि पश्चिमी इराक में एक आत्मघाती कार हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है. बीबीसी समाचार.
मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इसका तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। मैं राजेश जोशी अब अपने सभी साथियों की ओर से आपसे विदा चाहता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।